Iran Radio Podcast.
दोस्तों, रूजवेल्ट स्ट्रीट पॉडकास्ट का ये चौथा एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। March 31, 1979 को जिस वक्त इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था के लिए रेफरेंडम कराया जा रहा था, ईरान के प्रशासनिक मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्बास अमीर इंतजाम तेहरान में ब्रिटिश एम्बेसडर जॉन ग्राहम की मेजबानी कर रहे थे। इस मुलाकात में अमीर इंतजाम ने ग्राहम को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ईरान के कुछ प्रांतों में अमरीका समेत कुछ देश दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ईरानी सरकार के पास इसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम जानते हैं कि अमेरिकी एम्बेसडर विलियम सुलिवन के पिछले शासन की खुफिया एजेंसी सवाक के साथ संबंध है। ये सिर्फ दावा नहीं था बल्कि विदेशी शक्तियों के लिए एक चेतावनी थी। इससे साफ था कि अब ईरान उनके हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनका प्रशासन ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उन्होंने दूसरे मुल्कों से भी इस तरह के हस्तक्षेप से बचने का आह्वान किया था, लेकिन अमेरिकी सरकार का व्यवहार कार्टर के दावे से मेल नहीं खा रहा था। अमेरिकी एम्बेसडर विलियम सुलिवन एक ऐसे व्यक्ति थे इस बातचीत में जिनका नाम लिया गया था। रेफरेंडम में इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था के पक्ष में बहुत ही बड़ी संख्या में वोट पड़े, जिसके एक हफ्ते बाद सुबह सवेरे सुलिवन चुपचाप ईरान को हमेशा के लिए छोड़कर पैन अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 747 में सवार हो गए। सुलिवन के जाने के बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास की भारी जिम्मेदारियां अस्थायी रूप से चार्ज डी अफेयर्स चार्ल्स नास के कंधों पर आ गई। उन्होंने ये गंभीर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली जबकि उन्होंने ईरान में अभी ज्यादा समय नहीं बिताया था। चार्ल्स नास को अगले कुछ महीनों के लिए कुछ जटिल जिम्मेदारियां दी गई थी। ये मिशन इस प्रकार था। क्रांति के बाद के ईरान में अमेरिकी उपस्थिति और निरंतरता बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजना, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के लिए मुनासिब हालात तैयार करना, दूतावास की सुरक्षा बढ़ाना, पूर्व दूतावास कर्मचारियों से संबंध स्थापित करना और व्यवस्थित करना, हमले के दौरान दूतावास की इमारत को होने वाले नुकसान के बाद उसका पुनर्निर्माण करना और अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद विवादों को हल करना। लेकिन ये मिशन आसानी से पूरा नहीं हुआ। सुलिवन के तहरान छोड़ने के ठीक दो हफ्तों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तेहरान दूतावास में सुलिवन की जगह वॉल्टर कटलर को एम्बेसडर के रूप में पेश करने का फैसला किया है। 47 वर्षीय राजनयिक और जारे वर्तमान में कांगो में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत कटलर ने इससे पहले 1965 से 1967 तक तबरेज में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के रूप में कार्य किया था और वो ईरानी संस्कृति से किसी हद तक वाकिफ थे। 17 मई 1979 को अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति द्वारा कटलर को राजदूत के रूप में अनुमोदित किए जाने के दो दिन बाद अमेरिकी सीनेट ने पहलवी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की फांसी और विशेष रूप से ईरान में एक यहूदी फाइनेंसर और इजरायली एजेंट हबीबुल्ला अलकानियान की फांसी के खिलाफ नव स्थापित इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ अपना पहला प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव में अमेरिकी सीनेट ने ईरानी सरकार के कार्यों की निंदा करते हुए उस पर यहूदियों, बहाइयों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने और उन्हें मौत की सजा देने और अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने का आरोप लगाया। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रेरक न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन और यहूदी सीनेटर जैकब कोपेल जेविट्स थे। जेविट्स के अलावा कुछ दूसरे सीनियर सेनेटर्स ने भी प्रस्ताव का जमकर समर्थन किया। उनका कहना था कि पहले भी शासन के पूर्व नेताओं की सजा पर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। जेविट्स प्रस्ताव इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ अमेरिका की दुश्मनी की एक नई शुरुआत थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि यह प्रस्ताव इजराइल और अमेरिका की सरकारों के बीच पर्दे के पीछे हुए विचार विमर्श का परिणाम था। जिस तरह रॉकफेलर और कैसिंजर जैसी ज़ायोनी लॉबियों ने पहले मोहम्मद रजा शाह की अमेरिका यात्रा के लिए जमीन हमवार की थी, अब उन्हीं लॉबियों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ओटावा स्थित इजरायली दूतावास ने कनाडा सरकार के नाम एक नोट भेजा, जो ठीक 17 मई 1979 को जारी किया गया था। इस नोट में इजरायल ने अलकानियान की फांसी पर अपनी हैरानी और गहरी चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी कि सभी ईरानी यहूदियों को इस फांसी को अपने जीवन के लिए खतरा समझना चाहिए। इस नोट के अंत में इजरायली दूतावास ने सभी मित्र सरकारों से ईरानी यहूदी समुदाय के लिए इस असहनीय खतरे के मद्देनजर ईरानी अधिकारियों पर अधिकतम दबाव डालने का आह्वान किया था। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव जारी होने के बाद तेहरान और प्रमुख शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इमाम खुमैनी ने 19 मई को अपने प्रसिद्ध भाषण में इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह प्रस्ताव इसराइल के एक दोस्त ने पेश किया है जो एक ज़ायोनीवादी है। उन्होंने अमेरिकी धमकी पर कहा, अमेरिकी सरकार ने हमें धमकी दी है कि अगर फांसियों का यह सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका के साथ ईरान के संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, खतरे में पड़ जाएं। अमेरिका के साथ हमारे संबंध एक मजलूम और जालिम के बीच के संबंध है। ये एक लूटे हुए व्यक्ति और लूटने वाले के बीच का रिश्ता है। हमें इन रिश्तों का क्या करना है? उन्हें हमारे साथ रिश्तों की ज़रूरत है। अमेरिका दुनिया के दूसरी ओर है, उन्हें हमारे बाजार और तेल की ज़रूरत है, लेकिन हमें अमेरिका की क्या ज़रूरत है? अंतरिम सरकार ने भी वाशिंगटन में अपनी आवाज़ बुलंद की। उस समय ईरान के विदेश मंत्री इब्राहिम यजदी ने अपने अमेरिकी समकक्ष साइरस वेंस को एक पत्र में लिखा, आपने अपने पत्र में लिखा है कि आपकी सरकार ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती है। मैं आपकी इस बात की सराहना करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि पूर्व शासन के अपराधियों को दंडित करने के संबंध में 17 मई 1979 का अमेरिकी सीनेट का प्रस्ताव एक खुला हस्तक्षेप है जिससे आप इनकार कर रहे हैं। ईरानी लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात है कि जब पूर्व शासन ईरानी युवाओं का बेरहमी से कत्लेआम कर रहा था तब अमेरिकी सीनेट चुप रही और उसे ये महसूस नहीं हुआ कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब जब क्रांति सफल हो गई है और पूर्व शासन के अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है तो आप मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ और दशकों से सबसे शर्मनाक अपराध करने वालों का बचाव करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यजदी ने वेंस को यह आश्वासन दिया कि ईरान की अंतरिम सरकार अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक संबंध रखना चाहती है, लेकिन इसके लिए ईरान के क्रांतिकारियों की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। मई 1979 को ईरानी विदेश मंत्रालय ने चार्ल्स नास को तलब किया और सीनेट के प्रस्ताव को खुला हस्तक्षेप बताते हुए इसकी निंदा की। उनसे यह भी कहा गया कि फिलहाल अमेरिकी विशेष दूत कटलर की यात्रा को स्थगित करना बेहतर होगा। तेहरान, इस्फहान, तबरेज और शिराज में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इस प्रस्ताव के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया थी। यहाँ तक कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाले ईरान के नेशनल फ्रंट ने भी इसे देश के आंतरिक मामलों में स्पष्ट हस्तक्षेप बताया। 30 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने गोपनीय दस्तावेजों का हवाला देते हुए सीनेटर जेविट्स की पत्नी के पहलवी शासन के साथ संबंधों का खुलासा किया। मैरियन जेविट्स ने फरीदून होवेदा और अशरफ पहलवी के साथ मिलकर अमेरिका में ईरानी लॉबी का गठन किया था। ये खुलासा अमेरिकी सीनेट में मानवाधिकारों का दम भरने वालों के मुंह पर एक तमाचा था। उसके बाद अंतरिम सरकार ने कटलर के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ईरान में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति का आधिकारिक तौर पर विरोध किया। वाशिंगटन में इस फैसले को राजनयिक संबंधों के लिए खतरे के रूप में देखा गया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, ईरानियों के सामने दो से ज्यादा विकल्प नहीं है, कटलर को स्वीकार करें या राजदूत के मुद्दे में देरी। इस धमकी का मतलब था कि अगर उन्होंने कटलर को स्वीकार नहीं किया तो द्विपक्षीय संबंधों का स्तर बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। इब्राहिम यजदी ने भी जवाब दिया, अमेरिका को कटलर से अधिक अनुभवी राजनयिक को नियुक्त करना चाहिए। तनाव यही खत्म नहीं हुआ। 1979 की गर्मियों में पेंटागन ने फारस की खाड़ी में विशेष सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के बारे में आम धारणा यह थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। नाटो कमांडर जनरल बर्नार्ड विलियम रोजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका मध्य पूर्व या विकासशील देशों में 110,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है और फारस की खाड़ी इस तैनाती के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। कुछ ही दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने कार्टर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की गुप्त बैठकों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। विदेश मंत्री साइरस वेंस और रक्षा मंत्री हेरोल्ड ब्राउन की उपस्थिति में बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर आम सहमति बनी। इस योजना का लक्ष्य न सिर्फ ईरान में इस्लामी क्रांति के प्रभाव को रोकना और सोवियत खतरे के प्रसार को रोकना था, बल्कि फारस की खाड़ी के तेल संसाधनों पर कब्जा जमाना भी था। 2 जुलाई को इब्राहिम यजदी ने नए अमेरिकी प्रभारी ब्रूस लिंगेन के साथ एक बैठक में स्पष्ट किया कि ईरान इन धमकियों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। योजना संभावनाओं के लिए होती है, लिंगेन का जवाब था। इस गर्म माहौल में फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेनाओं की तैनाती 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में ईरान पर मित्र देशों के कब्जे और 1953 में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ अमरीकी तख्ता पलट की याद दिला रही थी। लेकिन इस बार ईरानी सिर्फ मूक दर्शक नहीं थे, लेकिन सैनिकों की तैनाती से भी ज्यादा अहम अमरीकी दूतावास के नए लक्ष्य थे। तेहरान स्थित CIA स्टेशन अब विशिष्ट मिशनों पर काम कर रहा था, जिसमें अमेरिका समर्थक उदारवादियों का एक राजनीतिक गठबंधन बनाना, कुर्द समूहों के माध्यम से ईरानी सरकार पर दबाव डालना, खुफिया और सुरक्षा ठिकानों को पुनर्जीवित करना और अंततः तख्ता पलट के लिए जमीन तैयार करना शामिल था।